Hi students, here is a new chapter for you for class 10th. This is a poem titled Ozymandias, written by P.B. Shelley. First of all, I'll give you an introduction of this poem. Students, this is also a sonnet. Now, what do we mean by sonnet? Sonnet is a particular typical poem which consists of 14 lines. This is the typical format of a sonnet, that it has 14 lines. Aur ye jo sonnet hai, Ozymandias, isme jo first 8 lines hai, wo ek octave banati hai. Octave means which comprises of 8 things. To jo pehla stanza hai Ozymandias ka, usme 8 lines hai aur uska ek octave banta hai. Aur jo uske baad next 6 lines hai, वो एक सेस्टेट फॉर्म करती हैं. सेस्टेट मींस समथिंग विच कंप्राइजेस ऑफ 6 पार्ट्स. तो ये जो पोयम है 14 लाइंस की, इसके दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है 8 लाइंस का, जिसे हम ऑक्टेव कहेंगे, और दूसरा पार्ट है 6 लाइंस का, जिसे हम सेस्टेट कहेंगे. अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पोयम है Ozymandias, इसमें पोएट किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. Students, this poem is about a ruined statue which has become so with the passage of time, and here we can correlate it with Shakespeare's sonnet, Not Marble Nor the Gilded Monuments. ये जो Shakespeare का sonnet है, ये आपने as poem number 3 पढ़ा था, Not Marble Nor the Gilded Monuments, और इसमें Shakespeare ने भी यही बात की थी, कैसे time है जो वो मार्बल्स और गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स को रूइन कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है. और इस पोएम Ozymandias में भी पोएट ने यही बात की है एक रूइंड स्टैचू के बारे में, जो कि टाइम की पैसेज के साथ डिस्ट्रॉय होकर आज एक रूइन बन गया है. द टाइटल Ozymandias इज द थ्रोन नेम ऑफ इजिप्शियन किंग रामसेस. थ्रोन नेम का मतलब ये है, जैसे आप कोई भी अल्टरनेट नेम रखते हैं, आप कोई निक नेम रखते हैं, ऐसे ही थ्रोन नेम एक किसी किंग ने रखा जब वो रूलर बन गया, कि वो रूलर के रूप में, किंग के रूप में Ozymandias के नाम से जाना जाएगा. वैसे उस किंग का नाम था रामसेस. एंड दिस पोएम टॉक्स अबाउट हिज फूलिश डिजायर टू इमोर्टलाइज हिमसेल्फ by erecting a statue. यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, this is the statue of King Ramesses, whose throne name was Ozymandias. तो ये King Ramesses ने सोचा कि वो अपने आप को famous बनाने के लिए, ताकि आने वाली बहुत सारी पीढ़ियां उनको जाने, अपना एक statue उन्होंने खड़ा किया. और ये जो poem है, ये बताती है कि कितने foolish थे ये, कि इन्होंने सोचा कि अगर ये अपना एक बड़ा सा स्टैचू खड़ा कर देंगे तो आने वाली जेनरेशंस इनको जानेंगी कि ये भी कोई इंसान थे. कैसे ये फूलिश बने, उसके बारे में हम पोएम में जानेंगे. सो लेट अस रीड अहेड. नाउ द टॉपिक्स विच वी विल कवर इन दिस पोएम, फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट द पोएट, देन वी हैव अ बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, देन आई रीड आउट द पोएम टू यू. That will be followed by an explanation and then the summary, which will be followed by the question and answers. So let's get started. First of all, I'll talk about the poet. This is P.B. Shelley. He was born in Sussex, England in the year 1792 and he died in the year 1822. Students, P.B. Shelley was born on 4th August 1792 in West Sussex in England. He was the eldest legitimate son of Sir Timothy Shelley, a Sussex landowner. अब यहाँ पर ये term आई है legitimate son. Legitimate means जो चीज legal होती है, जो चीज lawful होती है. तो ये उनके legal son थे, यानी कि उनकी wife से पैदा हुए थे. He had 4 younger sisters and 1 much younger brother. He received his early education at home. His early childhood has been recounted in The Life of Percy Bysshe Shelley by his friend and cousin Thomas Medwin. तो पीबी शेली के एक फ्रेंड और कजन थे थॉमस मेडविन, जिन्होंने एक बुक लिखी थी द लाइफ ऑफ पर्सी बिश शेली, जिसमें उन्होंने इस पोएट की चाइल्डहुड के बारे में लिखा है. He studied at Eton College and later at Oxford University. In the year 1811, Shelley anonymously published a pamphlet called The Necessity of Atheism, which was brought to the attention of the university administration, and he was called to appear before the college's fellows, including the dean. His refusal to repudiate the authorship of the pamphlet resulted in his expulsion from Oxford on 25th March 1811. अब पीबी शेली ने एक पैम्फलेट मींस एक पेपर पब्लिश किया जिसका टॉपिक था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म. एथिज्म मींस नॉट टू बिलीव इन गॉड, डिसबिलीफ इन गॉड. ये टॉपिक था उस पैम्फलेट का जो पीबी शेली ने लिखा जब वो ऑक्सफोर्ड कॉलेज में थे. अब उनका जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो अगेंस्ट थी इस चीज के, और उन्होंने उनको कहा कि आप इस डॉक्यूमेंट को वापस ले लीजिए, रेप्यूडिएट कर दीजिए, मींस इसको कैंसिल कर दीजिए. बट पीबी शेली रिफ्यूज टू डू सो, वो उन्होंने मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेंगे, और उसकी वजह से उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया. दीज आर दी प्रोमिनेंट वर्क्स रिटन बाय दी पोएट. He wrote many short stories, essays, poems, out of which the best known are Ozymandias, Ode to the West Wind, The Cenci, Adonis, Prometheus, Unbound, to name a few. तो पीवी शेली की बहुत सारी फेमस शॉर्ट स्टोरीज, एसेज और पोएम्स हैं, और उनमें से कईयों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं. ये वो बुक्स हैं जो पीवी शेली ने लिखी हैं. Now let us go to the background of the poem. The poem is a sonnet which was written in the year 1817. अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि सोनेट क्या होता है. This is a poem जिसका एक typical format है, उसमें 14 lines होती हैं. और ये जो poem है Ozymandias, इसमें first 8 lines का एक octave है, और जो बाकी की 6 लाइंस हैं, उनका एक सेस्टेट बनता है. इट इज अ सिंपल पोएम वेयर द पोएट टॉक्स अबाउट अ डिलैपिडेटेड स्टैचू ऑफ किंग Ozymandias. ही हाईलाइट्स दैट द स्टैचू इज बिल्ट बाय द रॉयल मेन इन ऑर्डर टू बी इमॉर्टलाइज्ड आर नॉट परमानेंट. दीज गेट डिस्ट्रॉयड एंड रूइंड विद द पैसेज ऑफ टाइम. The power and money of these rulers do not help in getting them name and fame. The poet says that time is very powerful and it destroys everything. The scattered pieces of these statues are a mockery at the mighty and the proud rulers who built them. अब यहाँ पर students जो word है dilapidated, इसका मतलब है कोई चीज जो टाइम के साथ खराब हो जाती है, टूट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसको हम डिलैपिडेटेड कहते हैं. तो यहाँ पर इस पोएम में पोएट ऐसे ही एक डिलैपिडेटेड, एक रुइंड स्टैचू के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है किंग Ozymandias का स्टैचू. और वो यहाँ पर ये चीज बता रहे हैं कि जो स्टैचूज बनाए जाते हैं रॉयल मैन द्वारा, रॉयल मैन मींस द किंग्स, वो स्टैचूज क्यों बनाते हैं, ताकि उनको आने वाली पीढ़ियां, आने वाली जेनरेशंस हैं जो, वो याद रखें और वो इमॉर्टल बन जाएं, यानी कि उनका नाम आने वाली बहुत सारी जेनरेशंस को पता चले. लेकिन ये जो स्टैचूज हैं ये परमानेंट नहीं होते हैं, ये टाइम के साथ रुइन बनकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो जो पावर और पैसा है इन किंग्स का, ये इनकी हेल्प नहीं करता कि वो बहुत देर तक याद रहे लोगों की मेमोरी में. और पोएट ये कहता है कि जो टाइम है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि टाइम के साथ हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, मींस हर चीज एंड हो जाती है। इन स्टैचूज के जो टूटे हुए टुकड़े हैं वो आज भी वहां पर गिरे हुए हैं और वो मजाक उड़ा रहे हैं इन किंग्स का, इन माइटी और प्राउड रूलर्स का जिन्होंने इनको बनाया था। क्योंकि इन माइटी और प्राउड रूलर्स ने ये स्टैचूज इसलिए बनाए थे ये सोच करके, इसका सबूत है कि कितने ज्यादा ताकतवर हैं ये रूलर्स, लेकिन आज तो वो टूट गए हैं, टूटकर इधर उधर बिखरे गिरे पड़े हैं और इन राजाओं पर हंस रहे हैं जिन्होंने इनको बनाया था। नाउ लेट अस रीड द